ساتویں ادھیائے کے 12 سے لے کر 15 سلوک سن لیا آپ نے, اور اس کے بعد آگے انہی تینوں گنوں یعنی برما وشنو مہیش یعنی انیہ دیوتاؤں سے سمبندت کہاں پہنچ جاتے ہیں, 20, 21 اور 22 اور 23, یہ تین سلوک اور سنو, اور پھر بیچ میں 18 سلوک سناؤں گا آپ نے. یہ دیکھیے گا, یہ پوتر گیتا جی وہی چل رہی ہے. اب تینوں گنوں انیہ دیوتا, تینوں گن بھی انیہ دیوتاؤں میں آتے ہیں, رج گن برما ست گن وشنو تم گن شیو جی, یہ بھی انیہ دیوتا میں آتے ہیں. یہ دیکھیے گا, یہ آپ کے سامنے سپشٹ ہوا. ساتواں ادھیائے اور یہاں دیکھو 20 میں, ان بھوگوں کی کامنا دوارا جن کا گیان ہرا جا چکا, جو جس دیو کی پوجا کرتا ہے وہ اسی پر آدھارت رہتا ہے اور ان کی وہی تک گیان ہرا جا چکا ہے, اپنے سبھاؤ سے پریریت ہو کر اس نیم کو دھارن کر کے انے دیوتا اور دیوتاؤں کی دوسرے بھگوانوں کی ایک پرماتما نے چھوڑ کے پورن پرماتما نے پورن دیو نے چھوڑ کے انے دیوتاؤں کی جو پوجا کرتے ہیں پوجتے ہیں انے دیوتاؤں کو پوجتے ہیں. آگے دیکھو 21 میں ہے کہ جو سکام بھکت جس دیوتا کے سروپ کو شردا سے پوجنا چاہتا ہے اس بھگت کی شردا کو میں اسی دیوتا کے پرتی ستھر کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ نہ مانتا تو پڑ کوئے میں مر کے, پر وہ لابھ کتی نہیں, چل وہاں مر لے جا جس کی پوجا کرنی ہے, پر لابھ کتی نہیں اکشینی کا جنم مر, مطلب بہت زیادہ کشٹ پہ کشٹ. آگے دیکھو 22 میں کیا لکھا ہے, وہ پرش وہ سادھک اس شردا سے یکت ہو کر اس دیوتا کا پوجن کرتا ہے اور اس دیوتا سے میرے دوارا ہی ودھان کیے ہوئے اچھت بھوگوں کو نسندے پراپت کرتا ہے. جیسے پر مکھیا منتری کہہ دے کہ منتری کو میں نے پاور دے رکھی ہے, منتری بنا رکھا ہے, وہ ایک اکشینک لابھ تمہیں دے رہا ہے لیکن میری شرن میں آ جاتا پورا لابھ دوں جتنا میں دے سکتا. آگے دیکھو اب 23 ماہ دیکھیے گا, 23 ماہ یہ 23 ماہ سلوک ہے. اس میں کمال کر دیا, پورا ہی نچوڑ دے دیا سارے کا, پرنتو ان الپ بدھی والوں کا الپ مید سام, الپ مید سام یعنی الپ بدھی والوں کا یعنی مند بدھیوں کا بدھیہینوں کا وہ پھل ناسوان ہے. دیوتاؤں کو پوجنے والے, پھر سیکنڈ کر دیا, دیوتاؤں کو پوجنے والے دیوتاؤں کو پراپت ہوتے ہیں اور میرا بھگت. اب دیکھو یہ اٹکڑی نہ غلط لگا رکھی ہے, جیسے چاہے بجے انت میں وے نہیں, مت بھگت مت بھگتا, میرا بھگت میرا بھگت مجھ کو ہی پراپت ہوتے ہیں. بس یہ بات کہنی تھی, میرا بھگت مجھے پراپت ہوگا. اب میرا بھگت مجھے پراپت ہوگا برہم بول رہا ہے, یہ کال بول رہا گیتا نے کہ برہما وشنو مہیش اور نیچے کی پوجا کرنے والے تو کتی نیچ آتما لکھا ہے مورک. ایسا کیوں لکھا مورک, پھر سوچنے کی بات ہے. جیسے 15 ادھیائے کا پہلا اور دوسرا اور تیسرا سلوک ہے, اس میں کیا بتایا ہے کہ اوپر کو جڑ والا نیچے کو تینوں گن روپی شاخا والا, رج گن برما ست گن وشنو تم گن شیو جی, یہ تو شاخا ہے اس سنسار روپی ورش کی, اور اوپر کو جڑ ہے وہ پورن پرماتما ہے. یہ دیکھیے گا, اس سے سپشٹ ہوگا آپ کو یہ سارے کہانی. اب یہ دیکھو, اردھو مولم ادھے ساکھم, اردھو مانے اوپر کو جڑ والا نیچے کو شاخا والا, یہ سنسار الٹا لٹکا ہوا سنسار روپی ورک سے ارجن, اس لیے بدھی ہی نے کہا ہے الٹی پوجا کرنے والوں کو. یہ سپشٹ کرنا یہاں ضروری ہو گیا, یہ پورن پرماتما تو سمجھو یہ پورن برہم تو جڑ ہے, یہ تو پورن برہم ست کبیر, یہ پورن برہم یہ پرم اکثر پرش, یہ تو جڑ ہے سنسار روپی ورش کی, اور یہ تنا سمجھو یہ اکثر پرش یعنی پر برہم یہ تنا ہے جو زمین سے باہر دکھائی دیتا ہے, وہ ترنت وہ تنا ہے اور وہ سارا پیڑ کہلاتا ہے. کبیر صاحب کہتے ہیں اکثر پرش ایک پیڑ ہے نرنجن وا کی ڈار, نرنجن وا نہیں یہ جوت نرنجن برہم, اس کی ایک موٹی ڈار ہے اور تینوں دیوا شاخا ہے یہ پات روپ سنساری. پرماتما نے اپنے دوارا رچی سرشٹی یہ 15 ماہ جائے ایک ایک دو کہہ دیا, एक श्लोक में मंत्र में बोल दिया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, अक्षर पुरुष माने ये ज्योति निरंजन ना ये परब्रह्म, और उससे निकला एक मोटी डार, उस मोटी डार के तीनों गुण रूपी शाखा रज गुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। अब ये क्या बताया है कि ऊपर को जड़ वाला ये रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी ये तो शाखा है एक उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की। और ये क्या बताया गीता जी में कि जो ऊपर को जड़ है, पंद्रहवें अध्याय का सातवां श्लोक देखिएगा ना, पहला ही श्लोक बिल्कुल फर्स्ट में कि ये ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ये पवित्र गीता जी। अब ये पंद्रहवां अध्याय देखो, ये पहला ही श्लोक है, इधर लो, ये अथ पंच दसो अध्याय प्रथम श्लोक में ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वथम प्राहु अवम ऊर्ध्व मूलम। अब ये संस्कृत देखो कितनी अच्छी की है, हिंदी भी बहुत अच्छा किया इस महापुरुष ने, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, यानी पूर्ण परमात्मा रूपी तो जड़ वाले, और नीचे को अध शाखम नीचे को शाखा वाले, इन ब्रह्म रूपी मुख शाखा वाले, नहीं नीचे अध माने नीचे को, शाखम माने शाखा वाले। ये देखो पूर्ण परमात्मा रूपी ये पूर्ण परमात्मा तो जड़ समझो, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और अध नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाले। बस ये तो ऊपर और नीचे की बता रहा काल, कहते मैं तो बस इतना जानू, इसको तो पूर्ण संत बताएगा जो पूर्ण रूप से जानने वाला होगा। इसको क्या कहते हैं, इसको ये संसार रूपी उल्टा लटका वृक्ष समझो। ये देखो वही पंद्रहवां अध्याय, अब ये चार श्लोक सुनकर फिर अठारहवां श्लोक सुनाऊंगा और फिर देखियो आपकी आत्मा गदगद होगी। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा समझो, यानी सतलोक में सतपुरुष है वो तो जड़ है इसकी, सारे ब्रह्मंडों की वहां से आती सबको राहत मिलती है, वहीं से सबको खुराक आती है, वो सबका पालनहार है। अध शाखम नीचे को शाखा वाला, संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, और वेद जिसके पत्ते कहे गए उस संसार रूप वृक्ष को जो संत यानी जो महात्मा मूल सहित जड़ से लेकर नीचे तक तत्व से जानता है वह तत्वदर्शी संत है, सह वेदवित, वह वेदवित माने तत्व वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। ओए ओए। भगवान गीता बोलने वाला कह रहा अर्जुन, जो इस पूरे ब्रह्मंडों को इस संसार रूपी वृक्ष को जड़ से और नीचे तक सारे बता देगा तो वो समझो तत्वदर्शी संत है, सह वेदवित, यह वेद जो इस ज्ञान को तत्व से जानता है, सह वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात तत्वदर्शी संत है। और यहाँ फिर आना पड़ेगा आपने चौथे अध्याय के 34वें श्लोक पे कि गीता बोलने वाला भगवान कहता है कि मैं नहीं बता सकता पूर्ण रूप से उस परम पिता के बारे में, उसके बारे में तो वो संत बताएगा जो तत्वदर्शी होगा, और उसकी महिमा क्या होगी ये आपको बता दी, जो सारे ब्रह्मंडों का नारा नारा चित्रण कर देगा वो तत्वदर्शी होगा। चौथे अध्याय का ये 34वां श्लोक देखो, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। गीता बोलने वाला भगवान कहता है कि मेरे बस की बात नहीं सारे ब्रह्मंडों की सही रचना बता दूं, ये तो वो संत बताएंगे जो परमात्मा के भेजे हुआ आवेगा। उस पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से कपट छोड़कर और प्रसन्नतापूर्वक प्रसन्न करने से वो परमात्म तत्व को, पूर्ण परमात्मा के तत्व को जानने वाले ज्ञानी महात्मा तत्व ज्ञान का तुझे उपदेश करेंगे, वह बता सके उसके पाने की विधि मैं नहीं जानता भाई। गीता बोलने वाला भगवान सरेंडर कर चुका है कि मैं उसके बारे में सारा नहीं जानता, वो तो कोई और संत आवेगा वो बताओगा। और वो प्रमाण भी दे दिया कि जो इस संसार रूपी वृक्ष को तत्व से यानी मूल सहित जाने, जड़ से लेकर सारी व्याख्या कर देगा सब ब्रह्मंडों की, सह वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। ये 15वें अध्याय का पहला श्लोक देखो, वह वेद के। अब फिर यहीं से शुरू करेंगे पहले से। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, नीचे को शाखा वाले, ऊपर देखो। अब इनकी हिंदी में बहुत अंतर है जो इन्होंने अनुवाद किया है। अब हम साथ में संस्कृत से फिर अनुवाद करते चलेंगे और इनका ठीक है वो बिल्कुल शाबाशी इनके माता पिता ने। संसार रूपी वृक्ष के पीपल वृक्ष को पीपल, पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं और उस संसार रूप वृक्ष को जो संत मूल सहित जड़ से लेकर अब पत्तों तक बता देगा, वह तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वह तत्वदर्शी संत है। अब देखो आगे दूसरे में क्या कहा कि तीनों गुण रूपी तस्य गुण प्रवदा, उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप रज गुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तम गुण शिवजी, ये जल से बड़ी हुई नहीं विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों रूपी शाखा है, विषय पर वाला शाखा विषय विकारों की शाखा है, जीव को यही फंसाए रखती है। और यहाँ देखो नीचे अध्यय मन नीचे और ऊपर सब जगह फैली हुई है, ये तीन लोक में इनकी रेंज है। वास्तविक ज्ञान तो ऐसे चलो जैसा ये लिखा है ऐसे चलो, और कर्म वो भी कर्मों के अनुसार इन सब जीवों को यहाँ पर बांधे रखती हैं या फंसाए रखती हैं, ये मुक्त नहीं होने देती, इसलिए कहा है ये मेरी माया बड़ी खतरनाक है। आगे देखो अब तीसरे और चौथे में हद कर दी मालिक ने, इस तीन लोक के ब्रह्म ने क्या कहा है, इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा मैं तुझे बता रहा हूँ मैं नहीं जानता इसको पूरा, तेरे और मेरे डिस्कशन में तेरे और मेरे विचार काल में पूर्ण ज्ञान मैं नहीं दे पा रहा हूँ। और क्यों, क्योंकि मुझे इसका पूर्ण ज्ञान नहीं है। स्पष्ट कर दिया इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में तेरे और मेरे डिस्कशन में यानी गीता वाले ज्ञान में मैं नहीं बता पा रहा हूँ, नहीं यहाँ वैसा विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत और न इसकी अच्छी प्रकार कोई स्थिति है। आगे देखो इसलिए इस सुविरट मूलम अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काटकर अर्थात पूर्ण ज्ञान रूपी हथियार के द्वारा इसको सुलझाया जा सके, उलझी हुई गुत्थी को ना तो कोई नहीं समझ में आ सकता, यानी उसके द्वारा काटकर तब समझा जाएगा, यानी सत्ज्ञान रूपी हथियार तो इसको काटा जाएगा। ये पांचवें वेद कुंजी है या पांचवा वेद सारे शास्त्रों के खोलने की, वो हथियार अब हमें मिल गया। अब चौथे में हद कर दी कति, जो कुछ कहना था चौथे में साफ कह दिया। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को वो पूर्ण जो मूल रूपी परमात्मा है ना जड़ और वहां चला जाता जो साधक, जाने के बाद उनकी जन्म और मृत्यु कभी नहीं होती, सदा के लिए अजर व अमर हो जाता है। तत् उसके पश्चात तुझे कोई तत्वदर्शी संत मिल जाए और ये सारा भेद बताने वाला मिल जावे, तो उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से यानी लौटकर नहीं आते अर्थात जिनकी जन्म मृत्यु नहीं होती और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वर्ष की यानी सारे ब्रह्मंडों की सारे संसार की रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, यानी जिसने सारे ब्रह्मंडों को रचा है। और ये गीता बोलने वाला भगवान कहता मैं भी उसी की शरण में हूँ, वो मेरा सुप्रीम बोस है, उसी आदि पुरुष परमेश्वर नारायण के मैं शरण हूँ, जो मूल रूपी भगवान है ना जड़ वो पूर्ण ब्रह्म, मैं भी उसी की शरण में हूँ, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, मैं भी उसी के अधीन हूँ, मैं उसी का हाथ जोड़ता हूँ, उसकी पूजा करता हूँ, तो मुझे यहाँ का टुकड़ा मिल रहा है जिससे मेरा ये सारा ये ब्रह्मांड चल रहा है। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए, अपना नहीं बता रहे अब तक, कहते उस परमेश्वर का वो तीसरे नंबर भगवान का। अब पंद्रह जाए के दो श्लोक और सुनकर और फिर आप कर्तार्थ हो जाओगे, इसी पंद्रह में जाए के ये 15, 16 और 17 श्लोक सुन लो बस, अध्याय नंबर 15 का और श्लोक नंबर ये 16 देखो नीचे, ये 16 है। संस्कृत है द्वौ इमौ पुरुषौ लोके, इस लोक में कौन से लोकों में ब्रह्म और परब्रह्म वाले ये कहे एक पृथ्वी तत्व से बने हुए लोक, इनमें दो भगवान है पुरुषौ, ये पुरुषों जो है इन दोनों के साथ लगेगा संस्कृत में ऐसा विधान होता है, छर पुरुष और अक्षर पुरुष, छर पुरुष तो ये नाशवान ब्रह्म और अक्षर पुरुष इससे ज्यादा अविनाशी ये परब्रह्म, ये दो भगवान है और इन दोनों के लोकों में यही सती थी प्राणी की, जन्म मृत्यु टड़े नहीं और सथूल शरीर तो इनके नाशवान है और जीवात्मा इन दोनों के भगवानों के लोकों में जीवात्मा अविनाशी है और जन्म मृत्यु कभी नहीं मिटे, कर्म दंड कटे नहीं। अब यहाँ देखो ये संस्कृत इन्होंने बहुत अच्छा अनुवाद किया है महापुरुष ने, इस संसार में नाशवान और विनाशी भी दो प्रकार के पुरुष लिख दिया, दो प्रकार के भगवान लिख देता। पुरुषो माने दो भगवान, पुरुष माने प्रभु होता है क्योंकि पहला नाम पुरुष का भगवान का है, उसके बाद मानव शरीर हमें मिला है उसने अपने जैसा बनाया है तो इसलिए मनुष्य को भी पुरुष कहने लगे। तो यहाँ पर ये दो प्रकार के भगवान है और इसी प्रकार इन दोनों के लोकों में संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, सथूर शरीर तो चाहे देव है चाहे महादेव चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी है और जीवात्मा अविनाशी कहा गया है। आगे देखो सत्र में मैं कमाल कर दिया, अब कहा कि इन दोनों से भी उत्तम पुरुष है तू अन्य, संस्कर देखो उत्तम पुरुष है तू अन्य, वास्तव में पुरुषोत्तम भगवान सबसे श्रेष्ठ प्रभु सुप्रीम पावर तो कोई और है इन दोनों से भी, परमात्मा इति उदारते जिसे भगवान कहा जा सकता है, वो है भगवान से ही, भगवान वो होता है जो कभी कष्ट ना दे ना मारे ना उसकी टांग काटे ना किसी का बेटा मारे ना किसी की बेटी मारे ना किसी का कोड लावे, उसको परमात्मा कहते हैं, परमात्मा इति उदारते। और ये लोक कर्म में अविषय विभर्ति अवे ईश्वर है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। यहाँ देखो फिर संस्कृत से हिंदी, उत्तम भगवान तो कोई और ही है, ये लिखना था उत्तम पुरुष है तू अन्य, इन दोनों से भी श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। वो है अविनाशी भगवान जो तीसरे नंबर का और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। ये देखिएगा ये जड़ है इस संसार रूपी वृक्ष की, कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, और ये अक्षर पुरुष उसमें एक तना है, इसी खुराक चली तना में आई इस परब्रह्म में और तना से फिर आई डार में, इस तना से ये परब्रह्म में फिर ये छर पुरुष यानी डार में, ये अक्षर पुरुष में फिर ये छर पुरुष में फिर तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश में, और हम तो फिर इनसे आगे यहाँ लटके हुए हैं। हमें जो लाभ होगा वो इन्हीं भगवानों के बाद मिलेगा, लेकिन ये खुराक कहाँ से आएगी, उस पूर्ण परमात्मा तो है। अब यहाँ देखना, अब ये आपने देखा सारा, अब इसमें एक और उदाहरण दिया जाएगा, जैसे छर पुरुष नाशवान भगवान अक्षर पुरुष अविनाशी, अब जैसे छर पुरुष तो ये ब्रह्म है अक्षर पुरुष इस परब्रह्म को कहा है, और इनके लोकों में जीवों की और इनकी स्थिति कैसी है, जैसे एक तो चीनी का कप हो चाहे पीने का मिट्टी वाला सफेद सफेद, उसको आपको पता है हाथ से छूटते टूटते गिरे और गिरते फूटे, ये तो नाशवान, ये तो कहते ब्रह्म और इसके जीव प्राणी जितने भी चाहे महादेव है चाहे हम है ये तो इतने नाशवान समझो, तुरंत नाशवान है, ये भगवान भी नाशवान है। और परब्रह्म जो है इतना अविनाशी है जैसे सटील का कप हो, और सटील का कप इसकी तुलना में बहुत अविनाशी नजर आता है, लेकिन उसका भी विनाश होगा, उसको जंग लगेगा मिट्टी होगी पर समय गणा लगेगा, इसलिए परब्रह्म भी अविनाशी का पर वास्तव अविनाशी नहीं है, वास्तव अविनाशी वो तीसरे नंबर की धातु सोना समझो, वो कबीर परमेश्वर है। अब ऐसा जानकर इनको समझना, अब आपने समझा कि वो पूर्ण परमात्मा ही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो ही भगवान है, वो ही पूजा के योग्य है और पूजा के योग्य नहीं है। अब इसको समझने के लिए अब सारा उदाहरण ये यहाँ आएगा, क्यों भगवान ने सातवें अध्याय के उन 12 से लेकर 15 श्लोकों में मूर्ख लोग बताया जो टहनियों की पूजा करते हैं। अब देखो, अब ये भक्ति रूपी पौधा यानी आम का पेड़ लगाओ, आप कैसे लगाओगे, जड़ को मिट्टी में या गमले में डालोगे और इसकी पूजा करोगे, ये है सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा अर्थात शास्त्र अनुकूल साधना, शास्त्र के अनुसार साधना ये बनी, और फिर यहाँ से खुराक चलेगी, ये कहाँ जाएगी, तना में, ना इसमें तना में यानी अक्षर पुरुष में, परब्रह्म में, परब्रह्म से ब्रह्म ये डार में, और डार से तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिवजी में, और हम तो यहाँ बैठे हैं पात्र रूप संसार, हमें लाभ इनसे ही होगा, ब्रह्मा विष्णु में इससे ही लाभ होगा, इन टहनियों का फल लगेंगे तब हमें आनंद आएगा। लेकिन कब लगेंगे फल? अब ये क्या बुरे थोड़े लगेंगे अपने को, ये और प्यारे लगेंगे ब्रह्मा विष्णु में, इस जमीन का टहनिया का फल लगेंगे। लेकिन ये पूजा हमने इस मूल की करनी होगी, इस मूल की पूजा से ही इस हमें लाभ होगा, और टहनियों की पूजा से करना हमारी मूर्खता होगी। अब क्या बताते परमात्मा कि हमारे को आज तक ऐसी पूजा करवा दी, अभी हमें ऐसी पूजा करवाई जा रही है, और जिसके कारण ये सारा काम बिगड़ गया। शास्त्र विरुद्ध साधना, उल्टा लटकाया हुआ भक्ति रूपी पौधा। कबीर साहब कहते हैं एक कैसा दे सब सद है, पूरा दिखाओ, एक कैसा दे सब सद है, ये सब सद सब जावे। हम सब साध थे, माता भी, मसाणी भी, ब्रह्मा भी, विष्णु भी, शिव जी भी हैं, और भी कोई बता दे वो भी, पितरवीर भूत भी, कहते सब साधे और सब जावे। माली सिचे मूल को हो फले फूले गवे, बता कितना निर्मल ज्ञान गीता, पवित्र गीता जी का। इसके साधन थे सारा सद गया, और इसके ये सब साधन थे सारा गया। तो अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वा की डारे, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसारे। अब पूजा के योग ये परमात्मा है, वो एक भगवान, और पूजा के योग नहीं है। अब देखो ब्रह्म, अब ये पांच मिनट का सत्संग, इस सारे लिंक है, इस सारे सत्संग का ये आज सुबह से लेकर अब तक का। अब अठारहवें अध्याय में सातवें अध्याय के अठारहवें श्लोक में क्या कहा भगवान ने, ब्रह्म ने, कि वैसे तो ये मेरी जो पूजा करते हैं ना, ब्रह्म साधना करते हैं, यहाँ से सुकृतिन शुरू होते हैं भक्ति के, अच्छे कर्म भक्ति के, लेकिन मेरी पूजा भी अनुत्तम है, अच्छी नहीं। अच्छी क्यों नहीं? क्योंकि वेदों में वर्णित विधि केवल ब्रह्म तक की है, ओम नाम का जाप है, और ओम नाम के जाप से प्रभु प्राप्ति नहीं होती, और आ जाती है सिद्धियां, आ गई, आकाश में उड़ गए, जंतर मंतर हो गए, यहाँ का धन भी मिल गया आपको, कार कोठी भी मिल जाएगी, महास्वर्ग भी पहुंच जाओगे, और महास्वर्ग में इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा से हजार गुना ज्यादा समय भी मिलेगा आपको, और यहाँ से ज्यादा बकवाद है वहां पे, लेकिन फिर भी जन्म मृत्यु है, 84 में आना पड़ेगा। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश से हजार गुना लाभ, तीनों गुणों की पूजा से ब्रह्म साधना का हजार गुना लाभ है, लेकिन जन्म मृत्यु कर्म दंड इसमें भी नहीं कटता। इसलिए ब्रह्म कहता है कि मेरी पूजा भी अच्छी नहीं भाई। चार प्रकार के मेरी पूजा करते हैं, कैसे? एक तो अर्थार्थी, अर्थार्थी माने जो धन लाभ के लिए केवल वेदों के मंत्रों से अपनी सब क्रिया प्रारंभ करते हैं, अपना केवल सांसारिक लाभ चाहने के लिए। और दूसरे अर्थ, जो कोई संकट निवारण के लिए जंतर मंतर तैयार करते हैं, वो भी मेरी ही पूजा ओम नाम से करके, और वो अपना ऐसे करते हैं। और तीसरे नंबर के जिज्ञासु, जिज्ञासु वो होते हैं जो केवल ज्ञान कलेक्ट करते फिरे, चारों वेदों को घोट लिया, 100 मंत्र याद कर लिया, दुनिया में प्रभु पाक के विद्वान कहलाने लगे, वो नहीं, वो भी भक्ति नहीं चाहते, वो भक्ति नहीं कर सकते। चौथे नंबर के ज्ञानी, ज्ञानी वो है जिन्होंने ये पता लगा कि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, और ये ऐसे खोने का नहीं है, और इस पूजा भी एक परमात्मा की करनी है, क्योंकि वेद गवाही देते हैं, उन्होंने वेदों को पढ़ा, और देवता और भगवान कोई नहीं पूजा के योग्य, केवल एक परमात्मा है। तो उन नादान आत्माओं को कहते हैं, उन बोली आत्माओं को, उन ड्यूटी आत्माओं को, सेक्रीफाइस आत्माओं को, उस पूर्ण परमात्मा के बताने वाला पूर्ण संतना मिला उसकी विधि, उन्होंने वेदों को जैसे जाना जैसा सोचा, ओम नाम के को पूर्ण ब्रह्म का मान के, और हजारों वर्षों तक साधना की, उनसे भगवान नहीं मिला, सिद्धि आ गई, और उसे क्या होगा, स्वर्ग से ले जाएंगे, महास्वर्ग में हजारों वर्षों तक, युगों तक रहेंगे, और फिर 84 लाख योनि में आना ही पड़ेगा। इसलिए घटिया बता, जैसे एक समय एक चक्रवर्ती राजा था, मानधाता चक्रवर्ती राजा, और उस एक चुनक ऋषि था, ऋषिश्वर जो ज्ञानी आत्मा जी ने वेदों को समझा जैसा कि एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, और तब भूल के नहीं करे, तो उसने ओम नाम के जाप से हजारों वर्षों तक बैठ कर साधनाएं की, मेडिटेशन किए, परमात्मा तो मिलता नहीं, क्योंकि गीता जी के 11वें अध्याय के 47वें श्लोक में लिखा कि अर्जुन ये मेरा जो तेजोमय शरीर मैंने तुझे दिखाया, 48वें श्लोक में, तेरे से पहले ना तो किसी ने देखा, ना कोई आगे देख सकता, और ना ये वेदों में वर्णित विधि से, न किसी यज्ञ से न तप से न जप से मुझे कोई नहीं पा सकता, अर्थात मेरी प्राप्ति तो किसी प्रकार भी नहीं हो सकती। इससे और बेनिफिट है ये आपको बता दिया। तो उसने ऐसा ही जानकर हजारों वर्षों तक साधना की, अप्रभु तो पाया ना, आखिर में अपनी सोच के शास्त्री ने बनाए दिए निराकार है। अब भी पता चलेगा आपके सामने परमात्मा कैसा है, लगातार सुनते रहना पवित्र आत्मा। अब क्या होता है कि मानधाता चक्रवर्ती राजा था एक, बेहतर सोनी सेना उसकी, उसने वो चक्रवर्ती राजा कौन होता है, पूरी पृथ्वी पर सम्राट होता है, और वो कुछ समय के बाद अपना परीक्षण करता है, किसी नरेश ने त्रियंती अंतर्गत किसी राजा ने तेरी सत्ता को अस्वीकार तो नहीं कर दिया, इसकी परीक्षण के लिए एक घोड़ा छोड़ देते हैं, अश्वमेघ यज्ञ करते हैं, उस अश्व यानी घोड़े के गले में डाल देते हैं एक पास पोस्टर लिख करके राजा के पास इतनी सेना है, और जिसने राजा की प्रभुता स्वीकार नहीं है राजा का घोड़ा बांध ले और युद्ध के लिए तैयार हो जा। सारी पृथ्वी पर घूमकर वो घोड़ा वापस आ गया, साथ में वो घोड़ा खाली था, बाकी घोड़ों पर सैनिक विराजमान थे। उधर से ऋषि की कुटिया, उस जो ना चुनक ऋषि की कुटिया के सामने से गए भी और फिर आ भी उधर से गए। जाती दफा ऋषि के मन में आया था भी एक घोड़े पर सवार क्यों नहीं इनके पे, बाकी सब सवार थे, ऐसा वो सोच रहा था। वापस आज उसने उस शंका का समाधान चाहा उनसे, भाई सैनिकों तुम एक घोड़े पर क्यों नहीं बैठा कोई भी, ये क्या बात है बाकियों पर बैठे हैं। तो उन्होंने बताया कि ये राजा मानधाता चक्रवर्ती का घोड़ा है और इसके गले में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, जो इसको पकड़ लेगा इस पर बैठना नहीं होता, और जिस जो इसको पकड़ लेता कोई राजा सब जगह घूमे, किसी ने नहीं पकड़ा, कोई पकड़ लेता तो राज साथ उसने युद्ध करना होता और राजा के पास बेहतर सोनी सेना है। बड़े फकर के साथ बता रहे हैं और उठपटांग बात बना के। ऋषि कहने लगे अभी क्या हो जाए, इसके घोड़े ने कोई पकड़ ले या किसी ने नहीं पकड़ा, क्या कौन पकड़े हमारे राजा के पास इतनी सेना है, ये कर दे वो कर दे। अब काल 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 के पास रिमोट है इन सब का, पहले तो इनको एटम बम बनावे और फिर इनको दुरुपयोग करें, काल के पुजारियों को, ब्रह्म के पुजारियों को। वहां से मन में गलत प्रेरणा भर दी, अगला इसका इसकी तो जो है ना अहंकार तोड़ना चाहिए। ऋषि ने पता के काम ऋषि का, बकवाद गढ़न का, अपनी भक्ति कर रहा था, करते रहते, राजाओं के काम अपने होते हैं, संतों के अपने, लेकिन ये काल का खेल सारा। उसके मन में आया भाई राजा का तो गर्व तोड़ना चाहिए, ये तो बड़ा गर्व हो गया इसको। ऋषि बोला भी मैं बांध लू तो इस घोड़े ने, सैनिकों से बोला, सैनिक बोले रे कंगाल दाने तो तेरे पास खाने को नहीं, और युद्ध तू करेगा मानदाता चक्रवर्ती राजा के साथ। अब ऋषि बोला भी कि मेरे भाग में ऐसा ही लिख रखा है और मैंने तेरे तो आपके राजा का युद्ध स्वीकार हो लिया। अब वो तो बहाना ढूंढे थे उन जो है ना सैनिकों ने घोड़ा बांध दिया ऋषि वाली उसी वृक्ष की कह, जिसके ऋषि की कुटिया डली हुई थी, झोपड़ी डाल रखी थी इसके सारे, और जाकर बता दिया राजा को कि आपका घोड़ा चुनक ऋषि ने पकड़ लिया। अब राजा ने बड़ा दुख हुआ भी आज एक आदमी की हिम्मत पड़ी तड़के, दूसरा कल न दूसरा तैयार होगा, ला इसको दुनिया को भी खौफ कर दूं, दुनिया को भी भयभीत कर दूं। अपनी बेहतर सोनी सेना की चार टुकड़ी बना ली और 18 करोड़ सेना एक बार भेज दी, एक आदमी को मारने के लिए, दुनिया को डराने के लिए, भयभीत करने के लिए। उधर से उस ज्ञानी आत्मा ने, उद्धार आत्मा ने अपने उस जीवन के जो कमाई करी थी उसमें एटम बम बनाया था सिद्धि से, वो सिद्धि से चार एटम बम बना लिए, चार पुतली तैयार की, एक पुतली छोड़ दी, 1800 सेना की सत्यानाश कर दिया। राजा ने दूसरी 18 करोड़ भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ दी। कहने का भाव यह है कि सर्वनाश कर दिया बेहतर सोनी जिसे ना कहा मालिक। अब यहाँ परमात्मा ये गीता बोलने वाला ब्रह्म कहता है कि मेरे पुजारी ये सर्वश्रेष्ठ थे ज्ञानी, और ये भी बेचारे उद्धार आत्मा मेरे ही द्वारा मिलने वाली घटिया राहत में आश्रित रहे। अब देखो 18वां श्लोक, अपने अपनी पूजा को भी ब्रह्म घटिया बताता है, अनुतम अश्रेष्ठ इसलिए बताया क्योंकि वो परमात्मा तो कोई और है जिसकी पूजा करनी चाहिए, जिससे परम शांति होगी, वो भी बताऊंगा दिखाऊंगा आपको। श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, 7वें अध्याय का 18वां श्लोक, ये देखिए इधर 18वां। अब क्या कहते हैं कि उदारा सर्वे एवं एति ज्ञानी तु आत्मा एवं मे मतम। ब्रह्म बोल रहा, गीता बोलने वाला भगवान, के मेरे विचार में ये सभी ज्ञानी आत्मा, जिनको ये पता लग गया एक भगवान की भक्ति करनी चाहिए लेकिन इनको पूर्ण संत ना मिला, ये हैं तो उदार। उदार माने सिर भी दे दें भगवान के लिए, शीश भी दे दें प्रभु को पाने के लिए, जिन हजारों वर्ष तक अपने तन की भी शुद्ध नहीं रही और लेकिन भगवान ना मिला, क्या हुआ? आस्तित सही, आस्तित माने आश्रित है, सह माने वो सारी वो ही, क्योंकि वो आश्रित है युक्त आत्मा यानी प्रभु में लीन आत्मा। माम एवं अनुतमाम गति, मेरी ही घटिया से घटिया, अनुतमा माने अति घटिया गति व्यर्थ, अनुतमाम गतिम मेरे वाली घटिया से घटिया राहत में ही आश्रित रहे, क्योंकि इनको परम पिता पूर्ण परमात्मा की भक्ति का मार्ग उस संत से नहीं मिला। अनुत्तम, देखो इन्होंने अनुत्तम माने क्या किया है, अति उत्तम कर दिया। अनुत्तम माने अति उत्तम, चौथी कक्षा के बालक ने पूछ ले अनुत्तम माने के, उत्तम माने बढ़िया, अनुत्तम माने घटिया। अगर कोई अनुत्तम का विपरीतार्थ अर्थ और कहीं शिक्ष आ जाए उसमें परीक्षा में, और बच्चा जो उसका अर्थ कर दे अनुत्तम का अर्थ क्या लिखा, अति उत्तम लिख दे माने शब्दार्थ आवे, तो उसको क्या मिलेगा, जीरो। और इन महात्माओं को मिल रहे 100, क्योंकि हम एग्जामिनर कमजोर थे, हम नाप ज्ञान नहीं था। अनुत्तमा माने घटिया थे, अति घटिया, अति घटिया लिखना था, बिल्कुल अति अश्रेष्ठ, और यह बात बिगड़ गई। अब क्यों? क्योंकि ये भगवान गीता बोलने वाला, यहाँ फैसला होगा 18वें अध्याय के फिर 62वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन अगर तूने परम शांति चाहिए तो भाई उस परमात्मा की शरण में जा, जिसकी कृपा से ही तो परम शांति और सतलोक को प्राप्त होगा, मेरी पूजा से नहीं हो सकता। 18वें अध्याय का और ये 62वां श्लोक देखो, ये आज का सत्संग या समापन होगा। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, अपनी तो मेरी तो घटिया से घटिया साधना भाई, और तूने पूर्ण मुक्त होना है तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, यानी वहां चला जाएगा सतलोक में। शाश्वतम स्थान माने सतलोक, सनातन परम धाम, सनातन धाम, सतलोक कहो या सचखंड कहो या अमर लोक कहो, वहां जाकर तेरे फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। ये स्पष्ट कर दिया, उस परमात्मा की शरण में जा। ये है वो शास्त्र में जो करना है और नहीं करना है, कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था, कहते शास्त्रीय प्रमाण है भाई, इसके अनुसार करना और नहीं करना। और ये क्या बताते हैं, ये सतलोक की महिमा गाने वाले ये 4-5 संत ने, गीता तुम्हारे काम नहीं, इसको छेड़ना भी नहीं, क्योंकि अपना बिराव ने नचा ना जावत आंगन टेढ़ा, वो काम हो गया। अब ये तो हमारी बीए की क्लास की जो है ना सिलेबस है, ऋषिज्ञ एमए और पीएचडी और जो है ना वो करेंगे, प्रभु पाएंगे, वह नौकरी मिलेगी, वो साधन के पूर्ण परमात्मा के मार्ग में, उनके इतिहास में, उनकी वाणी में प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये 4 दिन का सत्संग कंटिन्यू सुनिए, आपका बेड़ा। बंदी छोड़ कबीर साहेब, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय, स्वामी सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की, श्री काशी धाम की, श्री छुडानी धाम, श्री करौथा धाम की, सहे गरीब नमो नम सतपुर सको नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मुनि जन साधुआ संतो सर्व सदी नहीं, सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान, निराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम तेर गुण अकल अनुपेशन दुनम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निरकल अर्दमाम बेपरवा ऐथा है वार पार नहीं मद तुम ग्रिब जो सुमर शद होई ही गणनायक गलताना। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं, गण नायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊं। परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोई, अविगत गुण यतीतम सत पुरुष निर्मोही। सहम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पु शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन धर्मा विष्णु महेशा, शेष शेष मुख गावे पूज आदि गणेशा, इंद्र कुबेर सरीखा। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे, 33 कोटि अदारा काशी उतरे भव जल पारा, कट है यम की फांसी 33 कोटि अदारा, उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरों विनती करूं दरों चरण पर शीश, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दिया नाम बख्शीश। कोटि कोटि सजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी और, बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन तोर। अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ और पिता कुल, मैं अपराधी जन्म का नक्षक बरे विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो समार। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी जाखे चोवा जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं, जो रखो तो ही रहूं जो ते वो सुख। सूरत करो मम साईया, हम हैं बोझल माही, ऐसे ही बह जाओगे जो तुम न पकड़ोगे बांग। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर की असीम रजा से इस पवित्र नगरी नरेला के अंदर ये सत्यनारायण कथा आज प्रारंभ हुई। सत्यनारायण का अर्थ होता है अविनाशी परमेश्वर, सत्य माने अविनाशी, जिसका अस्तित्व कभी समाप्त ना हो, और नारायण मेन भगवान। सत्यनारायण कहो, सत्साहिब कहो, अमर पुरुष कहो, सतपुरुष कहो, अकाल मूर्त कहो, चाहे शब्द स्वरूपी राम कहो, वो पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर है। उसकी ये अमर कथा, उसकी सत्य कथा, जिस पुण्यात्मा को श्रवण करने के लिए प्राप्त होती है, बहुत ही पुण्य प्राणी है वो। कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाही और भाग बिना नरपावत नाही। कितना बड़ा ये नगर नरेला है और इसमें कितनी संगत सत्संग में आप आ रही है। इससे यही तुलसीदास जी की वाणी सिद्ध होती है कि सकल पदार्थ है जगमाही और कर्महीन नरपावे नाही। आज सभी मनुष्य शरीरधारी प्राणियों को प्रभु के सत्संग में आने का समय नहीं है और अपने पेट के धंधे के लिए अपनी रोजी रोटी के लिए से कितना कठिन काम क्यों ना करना पड़े वो तुरंत करने को तैयार हो जाता है। इसका कारण क्या है कि जैसे किसान को ये मालूम होता है कि यदि तू अपने इस कार्य को नहीं करेगा तो तेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, क्योंकि वो सही ज्ञान योग युक्त है। ज्ञान योग युक्त अर्थात ज्ञानी आत्मा। जैसे भक्ति मार्ग के जब हम ज्ञानी हो जाएंगे अर्थात ज्ञान योग युक्त हो जाएंगे, फिर हम इस कार्य को जैसे जमींदार करता है ऐसे हम अपनी इस भक्ति रूपी फसल को कैसे सफल करेंगे। जैसे जमींदार किसान, जनवरी का महीना ये हरियाणा और दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, यूपी का क्षेत्र, जिसमें जनवरी दिसंबर के अंदर कितना भयंकर शीत लहर होती है, कितना जाड़ा होता है, और जब किसान का रात्रि के समय सिंचाई करने का कोई नहर के पानी का नंबर आ जाता है, वो रात्रि के 12 बजे अंधेरी रात्रि में, चाहे ऊपर से कोहरा भी गिर रहा हो, धुंध भी पड़ रही हो, शीत लहर चल रही हो, वो अपने खेत में पहुंच जाता है केवल एक कंबल लेकर। और उसमें अन्य जो प्राणी यानी मनुष्य अपने मकानों के सभी खिड़की और दरवाजे बंद करके रजाई और ऊपर तक कंबल जोड़ के और हो सके तो हीटर भी जला करके उस सर्दी से बचने के प्रयत्न कर रहे होते हैं। और वो ज्ञान योग युक्त अर्थात वो सर्वज्ञानी अपने मार्ग का किसान खेत में पहुंच जाता है। वो नहीं परवाह करता तेरे को नमोनिया होगा, वो नहीं परवाह करता तेरे को सर्दी लग जाएगी, क्योंकि उसको ज्ञान होता है कि यदि आज इस कठिन काम को नहीं करूंगा तो कल मेरे हाथ में कुछ नहीं आवेगी, ना कोई फसल बनेगी, मेरे बच्चे भूखे मरेंगे और मैं कंगाल हो जाऊंगा। इस उद्देश्य को लेकर के वो उस भयंकर सर्दी में खेत के अंदर पहुंच जाता है और अपना काम पूरा करके आता है, जाकर के उस पानी के अंदर घुटनों पानी में चला जाता है, कपड़े भी गीले हो जाते हैं परंतु वो पीछे नहीं हटता। कारण क्या है कि उसको इस बात का सही ज्ञान हो गया है, हृदय में ये पक्की जचगी है कि ये काम करें सरेगा। ऐसे ही जिन पुण्यात्माओं को भक्ति मार्ग का ज्ञान हो जाएगा, जब वो ज्ञान योग युक्त हो जाएंगे फिर वो इसी प्रकार इस कार्य को करेंगे। चाहे कोई समाज नाराज हो, चाहे कोई बुरा कहे, चाहे भला कहे, और चाहे कोई वैसे किसी कोई आवश्यक कार्य भी हमारा रह जावे, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, फिर हम इसकी कभी परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपनी भक्ति रूपी फसल को फिर पूरा करके मानेंगे। क्योंकि हमें ज्ञान हो जाएगा कि इसके किए बिना काम कतई नहीं चले। इसलिए परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कहते हैं मानुष जन्म पाय कह नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना वही बनवाया क्या कामे। कबीर हरि की भक्ति करो तज विषियों रस चोज, बार बार न पाओगे ये मनुष्य जन्म की मोज। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी पीछे फिर पछताओगे जब प्राण जहांगे छूटी। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोए, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होए। पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, ये रावण सरीखे कौन गिने हैं ऐसे गए अनंत। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार सतपुरुष कुल मालिक कबीर साहिब अपने सतलोक स्थान से चलकर इस काल के लोक में आती है, और जब वो काल के लोक में आती है तो एक मानुष आम व्यक्ति जैसा जीवन जीकर अपने सत ज्ञान को हम प्राणियों को बता के और एक सत भक्ति यहाँ प्रचलित करके और अपनी समर्थता का प्रमाण देकर कि वो परमेश्वर सह शरीर चले जाते हैं, सह शरीर आते हैं। वो कभी किसी माँ से जन्म नहीं देते क्योंकि उन्होंने सारी सृष्टि की रचना की है और सबके कुल मालिक वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म है। इस बात का प्रमाण श्याम वेद संख्या नंबर 1400 आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। वैसे तो कहते हैं समझदार को संकेत गना, और जिसने सौदा करना होता है व्यापारी ने बिजनेसमैन को, वो क्या करता है मार्केट में जाता है, जिसने 1000 बोरियां गेहूं खरीदना हो या 1000 बोरी चीनी की खरीदनी हो, वो क्या करता है कि दूसरे व्यापारी के पास जाता है, बिजनेसमैन के पास, उसे कहता मैंने 1000 बोरियां भाई खरीदनी है और माल दिखा दे। तो वो बेचने वाला क्या करता है, एक परखी रखे, परखी एक लोहे की आगे से पहनने से मुख की, और उसमें ज्यादा से ज्यादा 100 ग्राम वो सामान वापस आ जाए, उसको ऐसे घुसो देता है उस बोरी में और फिर वापस निकाल लेता है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 50 या 40 ग्राम या ज्यादा से ज्यादा 100 ग्राम वस्तु आती है। यानी एक क्विंटल की बोरी में से ज्यादा 100 ग्राम निकालकर उसको दिखा देता है, वो देख लेता है, फिर दूसरी बोरी में, फिर तीसरी बोरी में, यानी एक एक बोरी में तो ज्यादातर वो ऐसे देखता है, और जो उस बोरी में होता है एक परखी में बाहर आ जाता है, उससे फिर वो सौदा कर लेता है। जिन पुण्यात्माओं को भक्ति रूपी सौदा करना है, सच्चे सौदागर होंगे, वो गणी बकवाद नहीं करा करते। हर कोई नौके भाई सारी बोरी खोल कर दिखा दे, मैं तो सब खरीदूंगा, तो वो बेचने वाला कहता अपने घर न जा भाई, तो फिर व्यापारी को न बकवाद करना है मेरे साथ, अभी न सब न खुलवा कर चला जाएगा, फिर लेना एक न देने दो। तो इसके लिए इस दास ने चारों वेदों में से परखी मार के और इस आपके सामने रख दी, आपने सामान खरीदना है तो हमारे पास ये माल है। ये परिभाषा प्रभु की सभी शास्त्रों में से, सभी पवित्र धर्मों के सभी शास्त्रों में से इसमें परखी मार के और इसमें निकाल रखी है, और किसी का शक हो तो इसको चेक करा ले, खूब मिला ले उन बोरियां तो जाके, और जिसने भगवान पाना है, भक्ति करनी है, तो आज कोई सु अवसर मालिक ने दिया है सदियों और युगों पर्यंत। इसमें श्याम वेद संख्या नंबर 1400 आपके सामने पेश करते हैं। जब तक हमें ये विश्वास नहीं होगा कि वास्तव में ये परमेश्वर कौन है, कैसा है, तो हमारा हम दृढ़ विश्वास नहीं हो सकता, और विश्वास बिना भक्ति नहीं बने। अब आपके सामने ये श्याम वेद जो है भक्ति का वेद है, और इस श्याम वेद में लगभग कई सैकड़ों स्थान पर कबीर नाम लिखा, परमेश्वर का कबीर नाम। हम उसे कबीर कहने लगे, कबीर। हम वेदों को वेद बोलते हैं हमेशा, कुदरती ऐसी लोकल लैंग्वेज बनकर, और हम वेद कहने लगे। अब वेद कह दे तो ही वही बात है, वेद कह दे तो ही वही बात है। किसी व्यक्ति का नाम वेद लिख दिया तो कागजों में वेद प्रकाश, और बोलेंगे उसमें वेद प्रकाश, कोई दिक्कत नहीं, व्यक्ति वही है। तो इसी प्रकार ये वही श्याम, इसको कबीर परमात्मा वही है। ये देखिएगा श्याम वेद, इसमें संख्या नंबर 1400, इसमें खासियत की है कि इसमें संख्या नंबर, सीरियल नंबर हर मंत्र का लिखा है। 1400 नंबर संख्या पे ये पूर्ण विवरण दिया है कि वो कबीर परमेश्वर क्या करता है, स्वयं आता है और अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वही ठीक ठीक अपने अपने सत ज्ञान को वही वर्णन करता है। इस समय जब ये देखिएगा, ये श्याम वेद कहां से प्रकाशित है ये भी देखिएगा, श्याम वेद भाष्य संपूर्ण, श्याम वेद हिंदी भाष्य स्वर्गीय पंडित तुलसी राम जी स्वामी कृत, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दयानंद भवन आसफ अली रोड नई दिल्ली दूरभाष इतना इतना। और ये देखिए ये है श्याम वेद का 1400 नंबर संख्या। इसमें क्या लिखा कि भद्रावस्त्रा, भद्रावस्त्रा माने तेज पुंज के का शरीर, चोला, वस्त्र माने चोला, तेज पुंज का शरीर, समन्या, समन्या माने ज्यों का त्यों उसी जैसा जैसा उसका पहले है, समन्या उसी के समान, और ज्यों का त्यों यानी जैसे ये हम, ये कपड़ा हमारा, ये शरीर, ये एक वस्त्र है और ओरिजिनल शरीर इसके अंदर और है। हम तो हमारे को तो योग जो है ना तेज इसका 5 तत्व का कपड़ा हमारा तो, और उस परमात्मा का ये हमारे जैसा कपड़ा नहीं है, वो तेज पुंज का शरीर है उनका, ये वो अकायम, अकायम मानिस इस अडचाम के पुतले, ऐसना विरम उस स्नायुओं के जोड़ जुगाड़ से नहीं बनता उसका शरीर, इसलिए भद्रा वस्त्र यानी तेज पुंज का शरीर, वस्त्र माने चोला, समन्या अपने तेज, क्योंकि भगवान मनुष्य जैसा है और मनुष्य जैसा ही ज्यों का तो दूसरा, समन्या उसी के सदृश और रूप बना के यानी उसके ऊपर एक और कोट पहन लिया, समन्या वसान है, वसान माने काफी, वस आन माने जीवन जी के, वस माने रह के, वसान माने मनुष्य जैसा जीवन जी के कुछ दिन संसार में रह के, वस माने वसना रहना, आने माने प्राण जीवन, आम व्यक्ति की तरह जीवन जी के, महान कबीर ये ऊपर रह लगा है छोटा रह, महान कबीर नी वचनानी संसन, वो महान विशाल सतगुरु गैबी ख्याल, विशाल सतगुरु महान माने विशाल सर्वशक्तिमान कबीर, वो कबीर परमेश्वर नी वचनानी संसन, नी वचनानी माने अपने लोकोक्तियों के माध्यम से, साधारण भाषा के माध्यम से, संसन माने वर्णन करता है अपना सत ज्ञान अपने ही लोकोक्तियों साधारण भाषा के माध्यम से वर्णन करता है। कब, जिस समय अनजान साधकों के द्वारा जो विचक्षण होते, विचक्षण माने जो चतुर दिख विद्वान पर ज्ञान कतिनी, उनके द्वारा शास्त्र विरुद्ध रूपी, शास्त्र विरुद्ध साधना रूपी पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना बताकर अनुपासना रूपी पुयमान, पुयमान माने मवाद, पुयमान मवाद, पुयमानो मवाद, अवत्सव चम्बो अपने पूरे प्रवचनों के अंदर शास्त्र विरुद्ध साधना रूपी, शास्त्र विरुद्ध साधना रूपी मवाद को चम्बो माने आचमन के साथ पिला रहे होते, उस समय वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म जागरिव देव वितौ होए अपने छुपे हुए सरगुण और निर्गुण मार्ग को वो परमेश्वर आकर जगाता है, उसको फिर वास्तविक ज्ञान देता है। इसका ये संस्कृत देखो आप, अब इसकी हिंदी यहाँ देखिए, इन्होंने कैसे किया ये भी देखिए। भद्रा भले, समन्या संग्राम योग्य। अब दास का दिया समझ में नहीं आई, बस समन्या माने जो का तो दूसरा अलग, सम ये तो आम बालक समझ जा दो जिसने थोड़ी बहुत हिंदी भी आती हो, सम अन्य जो का चो कोई और, डिक्शनरी उठा के देख लेना जो का चो पाओगा जैसे दास बतावे। वस्त्र माने वस्त्र तुल्य, तेजों को ये तेज पुंज के, तेज पुंज का कपड़ा वस्त्र शरीर, ओढ़े हुए वसाना माने ओढ़े, वसाना माने जो का चो शरीर बना के उसी के ऊपर एक और कपड़ा जो का चो पहन का परमात्मा, और आम उसकी तरह जीवन जी के। महान माने बड़े, बड़े कबीर, ये कवि लिख दिया उन्होंने। अब जैसे यहाँ एक बात और सोचनी पड़ेगी हमने, जब ये बात सुनो, जैसे यजुर्वेद है, अब यजुर्वेद को हम क्या बताएंगे, अब जैसे यजुर्वेद है, यजुर्वेद अब मान लीजिए हम यजुर्वेद की महिमा गा रहे हैं और इसको अर्घ ये हटा के यहाँ अपसर्ग भी लगा जाएंगे ना, और कहीं लिखा होगा यजु कर देंगे इसको, तो भी हमने फिर इस पुस्तक के बारे में जानकारी देनी है तो यजु भी लिखा होगा ना, कि तो अपसर्ग लगा के तो भी लिखना पड़ेगा ये यजुर्वेद। अगर यजु भी लिख देंगे अलग से, फिर भी हिंदी इसकी हमने यजुर्वेद लिखना पड़ेगा। ऐसे अगर ये कवि भी कर देते हैं तो भी कर लिखना पड़ेगा, वो कबीर परमेश्वर, चाहे वे केवल कवि भी लिखा होगा तो भी उसको लिखना पड़ेगा, वो कबीर परमेश्वर। अर्थात हमने जो है ना इसको अपभ्रंश बनाकर कबीर कहने लगे। वस्त्र नीचे ले आकर तो बोला जो फेस पाना चाहिए, तो ऐसे हम कबीर कहने लगे इसको, तो इसका अर्थ है। और इन्होंने देखिएगा क्या किया है, पूयमान का अर्थ कर दिया मवाद, ओ अमृत शोधमान अमृत, और पूयमान माने होती है मवाद, ए परमात्मा इतने विद्वान पुरुष और ऐसी जो गलतियां बनी हैं, अब ये सोचने का विषय बन गया हमारे लिए, भैया कहानी बिगड़ी क्यों करे, चल हमारे जैसा बुद्धि इन तो कुछ भी कर दे, 100 गलती कर सके, क्योंकि हम तो वैसे ही जिज्ञासु प्रभु के। देखिए भाई वही श्याम वेद और ये आराम तला कर, ये भद्रा वस्त्र यहाँ देखो, महान माने सर्वशक्तिमान कबीर, वो परमात्मा कबीर विद्वान, सुक्तों को यानी लोकोक्तियों को, जैसे शब्दावली कबीर साखी, ये नीव चरानी माने शब्दावली, संसन माने पढ़ते हुए वर्णन करना होता है, वर्णन करते हैं लिखते हैं कहना, विचक्षण माने दृष्टा जागरीव, आलस्य प्रसाद रहित पुरुष के सम्मान, पूय माने शोध मान सोम, यानी पवित्र अमृत लिख दिया मवाद का, मवाद माने ये सोम, पूय मान माने मवाद होता है, फोड़े फुंसी से निकला हुआ मवाद वो राद, और उसका अर्थ महापुरुषों ने शोध मान सोम लिख दिया। देव वितव यज्ञ में जब वो धूलोक और पृथ्वी लोक में अवच्छ मन प्रवेश करता है, क्या प्रवेश, अब देखो चलो ठीक, हम ज्यादा नहीं इनके टिप्पणी करते हैं, हम आपको दिखाते हैं, हम कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। अब देखिए पूयमान का अर्थ देख लेते हैं पहले, फिर ये बात समझ में आओगी। ये तो जिसने जरा सी भी संस्कृत पढ़ी होगी उसको भी पता होगा, हिंदी जानता ना वो भी जानता, पूय पूय माने मवाद होता है। और जैसे पव, पवमान, पव या पव माने, पव का अर्थ होता पवन या पवित्र करना, पव माने माने पवित्र, वो ऐसे ऐसे पूय माने का अर्थ होता है मवाद। ये देखिएगा हिंदी संस्कृत सबको, हिंदी संस्कृत शब्दकोश वमन शिवराम आपते, ऐसी ऐसी छह रखी है मेरे पास, लेकिन इसमें तकरीबन सारा ही विवरण है, उन सब से मिलता जुलता, उसे अन्य भी काफी वो, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया एक को। अब देखो भक्ति तो हम पीछे करेंगे जब पहले हमें ये समझ में आ जाओगी हम करने कहां जा रहे हैं और करना के था। जब ये बात समझ तभी हम कुछ हिम्मत से भी करेंगे और हमारा मन भी लगेगा। अब तो हमें यो नहीं मालूम हम जो कर रहे हैं ये क्या है इसका वास्तविकता। ये देखो ये पुए बड़े ऊ की मात्रा ये या पुयम, ये है पुए बड़े ऊ की मात्रा ये या यम, पुए या पुयम। पीप फोड़े या घाव से निकलने वाला मवाद, पीप आना मवाद निकलना। अब इसका अर्थ जैसे इस दास के समझ में ये है कि वो पूर्ण क्योंकि ये संकेतिक शब्द ज्यादा होते हैं और इसमें जो है पद्य भाग है ये जो शास्त्र ये हमारे जैसे चौपाई होती है ना चौपाई पद्य भाग में ऐसे ये पद्य भाग है गायन की तरफ होता है इसमें काफी शब्द संकेतिक और लुप्त होते हैं। जैसे परमात्मा कबीर साहब के दर्शन के उपरांत गरीबदास जी के अंदर परमात्मा ने वो रजा बख्शी उनके अंतरात्मा दीव दृष्टि खुल गई तो जब उन्होंने क्या कहा कि जैसे रावण मंगन गया चून ताते लंक वही ब्रोन। अब ये चौपाई टाइप है ऐसे ये श्लोक है। अब इसका वर्णन तो वही कर सका जिसने रामायण का पूरा ज्ञान हो। राजा राम की कार उलंगी सीता लंक मंझारे। अब इसका क्या अर्थ बने वैसे तो कोई अर्थ लग ही नहीं सकता। राजा राम की कार उलंगी सीता लंक मंझारे। अब आम व्यक्ति तो इसका सलाह कर नहीं सकता जिसने रामायण का ज्ञान नहीं। तो क्या कहा कि जैसे श्री रामचंद्र जी की आज्ञा हुई थी लक्ष्मण को कि या तो तू आना नहीं मेरे पीछे ये मारिच एक मृग की तलाश में मैं जा रहा हूँ और आए तो इसको चारों तरफ एक पक्की परिक्रमा देख रहा और इससे फिर क्या होगा इस मंत्र के बोल के ये रेखा खींच देना जिससे ये अंदर नहीं कोई इनसे पशु या पक्षी या मनुष्य कोई नहीं जा सकेगा सीता के पास। अब क्या किया कि जब अब हम क्या समझते हैं कि लक्ष्मण ने रेखा खींची आदेश श्री राम का था यहाँ बोलने वाले ने सर्वज्ञ है ये मालिक और हम अल्पज्ञ हैं हम इसको केवल उनकी रजा से समझ सकते ऐसे ये श्लोक सुधार वेद हमने सुलझाने पड़ेंगे कि राजा राम की कारो लगी और कोई नो कहा नहीं कार तो उसने रेखा कार माने रेखा तो लक्ष्मण ने की थी और सीता लंक में जा रहे। अब सीता लंक में थोड़ी थी वो तो चतुर